हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वेदांत जैसे ही कमरे में आया, उसकी नज़र सीधे बेड पर गई। वो अपनी टमेटो को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे विहा कहीं भी नज़र नहीं आई। इस वजह से उसने अपने होठों को फुलाते हुए अपने मन में कहा, अभी टमेटो की बच्ची कहाँ चली गई? मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है, मुझे उसे देखना है। इतना बोलकर वो अंदर आया और अपने हाथ में पड़ा बैग पॉइंट टेबल पर रखकर अपना कोट उतारते हुए विहा को आवाज़ लगाते हुए बोला, टमेटो कहाँ हो तुम? मैं आ गया ऑफिस से। ऐसे तो तुम रोज़ दरवाज़े पर खड़ी रहती हो। आज मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा मिस किया था तो तुम मुझे दिखाई भी नहीं दे रही। विहा जो बैल्कनी में बैठी थी, उसने जैसे ही वेदांत की आवाज़ सुनी तो जल्दी से उठने लगी। लेकिन फिर उसे याद आया कि आज पूरे दिन वेदांत ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया था, तो वो मुंह बनाते हुए वापस उसी बैल्कनी में लगे झूले पर बैठ गई और सामने आसमान में चमकते चांद को देखने लगी, जो फिलहाल बेहद अच्छा लग रहा था। वेदांत ने अपनी बेल्ट उतारते हुए कहा, कहाँ हो टमेटो? एटलीस्ट बता दो तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतना बोलकर वेदांत बाथरूम की तरफ गया, लेकिन वहां भी विहा नहीं दिखी। इसके बाद वेदांत को लगा शायद विहा निवेदिता के पास होगी, इसलिए वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। करीब 10 मिनट बाद वेदांत बाथरूम से बाहर आया और फिर अपने बालों को झाड़ते हुए खुद को मिरर में देखने लगा। तभी उसे बैल्कनी में से विहा के पायल बजने की आवाज़ आई और उसके कान खड़े हो गए। वो तुरंत ही अपने गले से टाल निकालकर सोफे पर फेंकते हुए तेज कदमों से बैल्कनी में जाकर बोला, अगर तुम यहीं बैठी थीं तो जो मैं आवाज़ दे रहा था बोल क्यों नहीं रही थीं? विहा ने कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र एक पल के लिए भी चांद से हटी नहीं थी, वो बस उसे ही देखे जा रही थी। वेदांत उसका फूला हुआ मुंह देखकर एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर झूले के सामने वहीं फर्श पर बैठकर विहा के पैरों को सहलाते हुए बोलता है, क्या हुआ टमेटो? बहुत परेशान नज़र आ रही हो, क्या नाराज़ हो मुझसे? प्रेगनेंसी के बाद विहा के पैरों में स्वेलिंग रहने लगी थी, इसलिए वेदांत को जब भी मौका मिलता तो उसके पैरों में मालिश करने लगता ताकि उसे थोड़ी राहत मिल सके। विहा ने एक झटके से उसके हाथों से अपनी पाँव छुड़ाते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको भूख लगी होगी, चलिए खाना खाने चलते हैं। इतना बोलकर वो झूले से उठने लगती है तो वेदांत जल्दी से उसे वापस झूले पर बैठाकर उसके पास बैठ जाता है और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोलता है, आज तुम्हें मेरे हाथ का खाना नहीं खाना है टमेटो, और इतना गंदा चेहरा क्यों बना रखा है, बताओ तो सही, हुआ क्या है? विहा ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, मैंने कोई गंदा चेहरा नहीं बना रखा है, मेरा चेहरा पहले से ही गंदा है, आपने देखने में देरी कर दी। अब तो वेदांत को यकीन हो चुका था कि विहा उससे नाराज है। उसने जल्दी से अपनी कान पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी टमेटो, पता नहीं मैंने क्या गलती की, तो जो भी गलती की मैं उसके लिए तुमसे माफी मांग रहा हूँ, एक बार मेरी तरफ देखा तो सही, ऐसे नज़रअंदाज मत करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वेदांत ने जैसे ही यह कहा विहा की आंखों में आंसू भराए। उसने रोते हुए कहा, पूरे दिन आपने जो मुझे नज़रअंदाज किया है उसका क्या, आपने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया, ना मैसेज किया, ना मुझे ये पूछा कि मैंने खाना खाया है या नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? और अगर आप पहले से ही ऐसे बेफिक्र टाइप थे तो मेरे लिए इतना केयरिंग बनने की क्या ज़रूरत थी, आप ऐसे ही रहते ना हमेशा से, फिर मुझे बुरा नहीं लगता। वेदांत ने जल्दी से अपने हाथ को विहा के चेहरे पर ले जाकर उसके गाल को सहलाते हुए कहा, अरे मेरा बच्चा, आई एम सॉरी, आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, बस इस वजह से तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, वैसे मैं किसी रोज़ ही रहता हूँ, पर आज बाहर का काम ज़्यादा था, ऑफिस का काम मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, मुझे अपने लॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाहर का काम इग्नोर नहीं कर सकता हूँ बच्चा, उसके वजह से हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन का राम बिगड़ जाता है, और आज जो हो गया सो हो गया, आई प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुमसे खाने के बारे में ना पूछूं, अब प्लीज़ रोना बंद करो टमेटो, आई लव यू माई बेबी। इतना बोलकर वेदांत ने आगे बढ़कर आहिस्ता से विहा के माथे को चूम लिया और फिर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। वो बस कैसे भी करके विहा का रोना रोकना चाहता था, वो खुद बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो विहा के लिए एफर्ट्स करने के लिए रेडी था। थोड़ी देर बाद जब विहा का रोना कम हो गया तो वेदांत ने उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके बाल सहलाकर कहा, क्या खाओगी टमेटो, बताओ मुझे, मैं अभी तुम्हारे लिए बनाकर लाता हूँ। बहुत ज्यादा रोने की वजह से विहा की हिचकियां बन गई थीं। उसने वेदांत की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भेजते हुए एक हिचकी भरकर कहा, नहीं आपको कहीं नहीं जाना है, यही मेरे पास रहो। जो भी खाना बना है वो रूम में मंगवा लो, मुझे नीचे नहीं जाना है। भूखा रहने की वजह से विहा की आवाज में भी कमजोरी आ गई थी, जिसे महसूस कर वेदांत ने गहरी सांस भरी और फिर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, तो आज तुमने खाना नहीं खाया? विहा ने कुछ नहीं कहा और उसका रोना अभी भी बंद नहीं हुआ था, क्योंकि एक बार जब वो रोना शुरू करती है तो चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाती है। वो खुलकर रोती है, वरना उसके गले में दर्द होने लगता है। वेदांत को भी पता था कि इतनी जल्दी विहा का रोना कम नहीं होगा, इसलिए वो भी चुपचाप बस लगातार एक हाथ से उसकी कमर को सहला रहा था तो दूसरे हाथ से उसके सिर को, और बस उसके चुप होने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद विहा चुप हो गई और वेदांत ने नीचे से उन दोनों के लिए खाना भी मंगवा लिया। उसके बाद वेदांत ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। इसके बाद विहा का मूड काफी हद तक ठीक हो गया, लेकिन उसकी ओवरथिंकिंग कम नहीं हुई थी। उसे अभी यही लग रहा था, शायद वेदांत को उसका काम उससे ज्यादा प्यार है और वो इस चीज को बदल नहीं सकती है। उसे इसी के साथ आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा और अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम करना पड़ेगा। एक इंसान उसके लिए हर वक्त फ्री नहीं रह सकता है, ये उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बेड पर लेटने के बाद वेदांत ने विहा को अपने सीने पर लेटा रखा था और उसका सिर सहलाते हुए उससे बातें कर रहा था। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसके बावजूद वो सो नहीं रहा था, ताकि उसकी टमेटो को ऐसा न फील हो कि वो उसे अब भी इग्नोर कर रहा है और उसकी फिक्र नहीं कर रहा है। विहा ने वेदांत की बियर्ड को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहा, आपको पता है वेदांत, मुझे कभी कभी क्या लगता है? वेदांत ने उसके सिर को चूमते हुए कहा, हाँ बताओ टमेटो, क्या लगता है तुम्हें? विहा ने उसके सीने से अपना चेहरा उठाकर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, यही कि मेरी शादी एक बेरोजगार इंसान से होनी चाहिए थी, मुझे किसी कंपनी के सीईओ को पसंद नहीं करना चाहिए था। उसकी ये बात सुनकर वेदांत की आंखों में हैरानी आ गई। हर लड़की का सपना तो यही होता है कि उसकी शादी अमीर से अमीर लड़के से हो, ताकि वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। तो फिर विहा को किसी बेरोजगार से क्यों शादी करनी थी? और साथ ही साथ उसे बुरा भी लग रहा था, क्या अब उसकी टमेटो उसे पसंद नहीं करती? वेदांत ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो टमेटो? तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तुम्हें कोई और पसंद आ गया है?
विहा ने ना में गर्दन हिलाई और फिर अपना चेहरा वेदांत की गर्दन में छुपाते हुए कहा, क्योंकि एक बेरोजगार इंसान ही मेरे लिए दिन में 24 घंटे फ्री रह सकता है और मेरी फिक्र कर सकता है। जिस इंसान के पास काम होता है वो तो अपना काम करेगा ना, हर वक्त मेरे पास कैसे रहेगा? और फिर मुझे रोना भी आता है। मैं इस बात को समझती हूँ कि आपका काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा दिमाग यही ओवरथिंक करता रहता है कि अब आप बदल गए हो, मैं क्या करूँ, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद वेदांत के होठों पर स्माइल आ गई। उसने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, ये बहुत नॉर्मल है टमेटो, और प्रेगनेंसी की वजह से तुम्हारे मूड स्विंग्स और भी ज़्यादा हो गए हैं, और शायद मैं भी लापरवाह हो गया। मुझे तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और आगे से मैं रखूँगा। अभी तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है, गुड नाइट बच्चा। इतना बोलकर वेदांत ने करवट बदली और विहा को अपने सामने लेटाकर शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया, जिसके साथ ही विहा की आंखें भी सुकून से बंद हो गईं।